नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय का नाम है, टॉपिक जानते हैं, एकज भूल। बाबा एकज भूल किसको कहते हैं मुरलियों में? एकज शब्द का क्या अर्थ है? पहली बात, एकज शब्द का क्या अर्थ है? मुख्य, एकज शब्द का अर्थ मुख्य, एकज शब्द का अर्थ एक कारण से अनेक कारण हो जाए वह एकज का अर्थ, और एकज भूल महान भूल एकज का अर्थ, एक ही वास्तव में एकज का अर्थ होता है फकत एक, वन एंड ओनली वन। महाभूल एक ऐसी भूल और जिसके वजह से बाकी सारी भूले हुई, द ग्रेट मिस्टेक ऑफ मिस्टेक्स, द ब्लंडर ऑफ ब्लंडर्स, द वन एंड द ओनली ब्लंडर, एक परम भूल। बाबा ये शब्द एक ही चीज के लिए मुरली में आया है। कौन सी चीज है वो? नहीं, गीता का भगवान। गीता का भगवान मैं हूं और मेरी जगह उसका नाम डाल दिया। ये दो बातें हैं जो बाबा को एकदम दिल में फील होती है। कौन सी? पहला तो गीता का भगवान मैं हूं और मेरी जगह उसका नाम डाल दिया, और दूसरी सर्वव्यापी। जानकी दादी सुनाते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए और बाबा मुरली चला रहे हैं, और बाबा ने कहा कि गीता का भगवान मैं हूं और ना ही कृष्ण। तो दादी ने पूछा, बाबा आपको बुरा लगा क्या? फील हुआ आपको? ये एक बात के लिए बाबा बहुत सेंसिटिव है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा एक एक से हिसाब लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक कच भूल। परंतु आज हम इस विषय को किसी और अर्थों से लेंगे। बहुत समय पहले जब जैन धर्म की स्थापना हो रही थी, महावीर वर्धमान महावीर साकार में इस सृष्टि पर थे। बहुत सारे युवक उनके पास आते थे और दीक्षित होते थे, सन्यस्त होते थे। ऐसे ही एक बार एक राजकुमार बहुत वैराग से भर गया, संसार से वैराग आ गया, सब कुछ छोड़कर उनके पास आ गया सन्यास लेने, और फिर उस संघ के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा। कभी वो लोग पेड़ के नीचे, कभी पहाड़ों के नीचे, गर्मी सर्दी धूप सब कुछ सहते हुए। तो वो जो युवक था बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि उसके राजसी सुख यहां थे नहीं। वैराग तो आ गया था, परंतु यहां आने के बाद पता चला यहां क्या क्या है। और जब यहां आया तो, और उस पर मच्छर, ध्यान करने बैठो तो मच्छरों ने बहुत परेशान किया इस देश के योगियों को। द्वापर से ही बैठने नहीं देते थे। तो एक रात वो सोच रहा था कि छोड़कर भाग जाऊं। कई रातों से कोशिश कर रहा था, प्लानिंग चालू थी अंदर, टू मच, इनफ इज इनफ, अब और नहीं सहन कर सकता। सोच रहा था यहां से भाग जाऊं, हर दिन सोचता था, और एक दिन पूरी तैयारी हो जाती है, और उसी समय महावीर आ जाते हैं और उसको कहते हैं, कहां भाग रहे हो? तो वो अपनी सच्ची बात उन्हें बता देता है। महावीर उसको जाति स्मरण सिखाते हैं। जैन और बौद्ध ये दो धर्म ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में क्या क्या हम थे वो याद कैसे करे उस पर बहुत जोर दिया है। ऐसी ही एक टेक्निक ऑफ हिप्नोटिक रिग्रेशन है जाति स्मरण, जिसमें व्यक्ति पिछले जन्मों में जाता है। किस पर्पस के लिए? खाली यह देखने के लिए नहीं कि मैं क्या था, मैं कौन था। महावीर उस युवक को उसके पिछले जन्मों में लेके जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि ऐसे दो बार हुआ कि उसने धर्म का मार्ग चुना और दोनों बार भाग के चला गया। दो बार ऐसा हुआ कि उसके पास अवसर आया और दो बार वो वहां से भाग गया और फिर से गृहस्थी बन गया और फिर से संसार के नरक में डूब गया। उसे वो सारा दृश्य दिखाते हैं और जैसे ही वो देखता है कुछ हलचल होने लगती है और महावीर उससे कहते हैं कि इस बार क्या तुम फिर से वही गलती करोगे? दो बार तो तुमने देख लिया क्या हुआ। दो बार तुम्हारे पास इतना अच्छा अवसर था पर दोनों ही बार तुम चूक गए, मार्ग से हट गए और फिर से उसी नरक में डूब गए गृहस्थ जीवन के, उसी मोह में फंस गए, पत्नी बच्चे सारा प्रपंच संसार। और जैसे ही उसे वो सारा दिखता है तुरंत वो सोचता है कि इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, पिछले जन्म में दो बार तो कर चुका हूं, इस बार अब नहीं फंसूंगा। फिर से जागृत हो जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये एक बहुत अच्छा फायदा है। एक उपयोग ये है कि एक ही गलती व्यक्ति ने कई बार की है वो हम देख सकते हैं, ये संसार में गए और क्या पाया, हाथ में क्या आया, कुछ भी तो नहीं, फिर से वही गलती। कितनी बार वही वही गलती करेंगे? तो इस कुमार जीवन में भी ऐसी कुछ भूले हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक भूल कई सारे भूलों को जन्म देगी। एंड देयर इज नो रिटर्न बाद में। जैसे एक गृहस्थी है, वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते मांगो, मन्नत मांगो। वो कहता है मैं गृहस्थी हूं, मुझे वापस कुमार बना दो, बहुत दुखी हूं गृहस्थी से, यहां पर दुख ही दुख है गृहस्थी में। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। कुमार जीवन अर्थात क्या है? पैराडाइस ऑन अर्थ। कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन, जहां मर्जी चाहो वहां जाओ। गृहस्थी अर्थात बंधन, दुख, बोझ। हां वो कोई पहले से ही उसमें है और फिर ज्ञान में आए वो दूसरी बात है, परंतु जो स्वतंत्र है, निर्बंधन है, वो सब कुछ जानते हुए समझते हुए अपने आप को बेड़ियों में फंसाए, अटकाए, दुखी करे, ये मूर्खता नहीं महामूर्खता है। वो मार्ग हमारा नहीं है, वो मार्ग बंद हो चुका है। उसमें जाकर क्या होता है ये उन सब से पूछो जो उसमें है, तो फिर संकल्प नहीं आएगा उसमें जाने का। तो ब्राह्मण जीवन में, कुमार जीवन में, कुमार कुछ कुछ भूले करते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली भूल, एक बाप को सहारा बनाने के बजाय किसी देहधारी को सहारा बना लेना। एक परमात्मा को सोल सपोर्ट बजाने के बजाय किसी देहधारी का आधार ले लेना, उसमें फंस जाना। जो अकेला चल रहा था व्यक्ति, अभी वो जो खेल होता है ना, बोरी में पैर डालकर भागना, एक वो पैर डालता है, एक हम डालते हैं, उसको बांधते हैं और भागो, और हम सोचते हैं कि हम तेजी से भागेंगे, वो भी पुरुषार्थी, मैं भी पुरुषार्थी, चलो भागते हैं। पर कितना भी कोई पुरुषार्थी हो, क्या होगा, गिरेंगे। सुबह भी कहा था, मार्ग ये अकेले का है, यहां किसी को साथी नहीं बनाना है। साथी बनाया अर्थात फंसे। चाहे वो कितनी ही बड़ी योगी हो, चाहे कितनी ही बड़ी महान आत्मा हो, या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन है। The other is bondage. पर जो है वो बंधन है। इसलिए स्वयं को जितना हो सके अकेला, और एक वो एकमात्र आधार। ये बहुत बड़ी भूल है। और सहारा क्यों चाहिए, क्यों सहारा बनाता है व्यक्ति, क्यों चाहिए, अकेला बना जाता है इसलिए, और क्यों चाहिए, बोरिंग, कोई तो चाहिए साथ साथ, कोई केयर करे, कोई अटेंशन करे, कोई प्यार करे, कोई अच्छी बातें बोले, कोई अच्छा भोजन बना कर दे। एक शिकारी जंगल में खो गया, कई दिनों तक कोई नहीं मिला, वो जंगल वीरान जंगल था, अकेला घूम रहा है, भटक रहा है जंगल में, मनुष्य भी नहीं दिख रहा है, कोई परिंदा, पंछी, पशु कुछ भी नहीं, ऐसे बिहड़ निर्जन जंगल में खो गया, ढूंढता रहा कई दिनों तक, भूखा प्यासा भटकता रहा। और अचानक एक दिन देखता है कि एक व्यक्ति झाड़ के पास बैठा हुआ है, एकदम प्राणों में प्राण आ जाते हैं, खुश हो जाता है कि कोई दूसरा भी है इस जंगल में, वो भी मनुष्य, और भागता है उसके पास। और वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी एक शिकारी होता है, वो भी रास्ता भटक गया होता है, उसे भी कई दिनों से कोई नहीं मिला होता है, और वो और ये दोनों मिलते हैं, और इतनी खुशी होती है दोनों को, वाह, अब तक दोनों अकेले भटक रहे थे, अभी दोनों साथ साथ भटक रहे हैं, अभी तक दोनों अलग अलग घूम रहे थे, अब तक दोनों अलग अलग भिक्षा मांग रहे थे, अब दो भिखारी साथ में आए हैं, और दोनों साथ साथ भिक्षा के लिए निकल रहे हैं। इसी प्रक्रिया को समाज ने विवाह का नाम भी दिया है। ना तो वो संपन्न है, ना ये संपन्न है, ना तो तृप्ति इसमें है, ना तो उसमें है, और सोच रहे दोनों मिलकर तृप्त हो जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है, ये परम सत्य है जीवन का। कोई कितना भी अच्छा है, भले सहयोग करे, सब कुछ करे, परंतु हमें तृप्त नहीं कर सकता। आंतरिक तृप्ति जो है, द डीपेस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन नेचर इज यूनियन, परंतु वो यूनियन व्यक्ति देह के तल पर ढूंढता है, फिजिकल लेवल पर, और सोचता है ये यूनियन सबसे बड़ा यूनियन है, और इसी में परम सुख है, और इसी के लिए सारा सम्मोहन क्रिएट किया गया है, एंटायर प्रोसेस, सारी फिल्में से लेकर तो सारे उपन्यास से लेकर तो सारा मीडिया, परंतु व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, प्यासा ही रहता है सारे भोग और विलास के बाद, क्योंकि आत्मा की प्यास है मिलन की। परंतु देह के तल पर होने वाला मिलन सबसे क्षुद्र मिलन है, उससे आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। आत्मा तृप्त होगी जब उस परमात्मा से मिलन का अनुभव करेगी। उसकी एक झलक मात्र उस देह के मिलन में है, और वो भी झूठी, जिसके लिए तृप्त नहीं हो पाती। तो व्यक्ति को सहारा क्यों ढूंढता है? एक तो बोर हो जाता है, अकेला हो जाता है, केयर चाहिए, लव चाहिए, और सोचता है कोई साथ हो तो हम आगे बढ़ेंगे साथ साथ, और क्यों चाहिए सहारा? बीमारी में मदद, बीमार पड़ जाए तो देखभाल करे, केयर करे, अटेंशन करे, और क्यों चाहिए? दूसरे ना बोले तुम अकेले क्यों रह गए, दूसरे कुछ ना बोले इसलिए अच्छे। और फैमिली, फैमिली प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा और ट्रू फैक्टर है। समाज की रीति रिवाज, रस्म, समाज की मर्यादाएं, बुढ़ापे में आधार, बुढ़ापे में सहारा, मल्टीपल फैक्टर्स है। ये कोई आज की बात नहीं है, द्वापर से चालू है, या सतयुग में भी है शादी। तो देवता शादी क्यों करते हैं? सोचा है इसके बारे में कभी? वहां तो स्त्री पुरुष और वो तो आत्माभिमानी है सभी। सोचना इसके विषय में। तो पहली भूल है एक परमात्मा को आधार न समझकर मनुष्य को आधार बना लेना। चाहे किसमें कितने ही गुण हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही दिव्य बुद्धि हो, कितना ही कैसा हो, परंतु बंधन है। एक सहारा बना लेना, दूसरा किसी देहधारी को अपना, अपनी शक्ति बनाना, स्ट्रेंथ समझना। ये मेरे साथ है तो कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं, ये मेरा सपोर्ट है, शक्ति है मेरी, शक्ति मान लेना उसको। चाहे वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, या और कुछ उसमें गुण है, या उसके आने से बहुत सारा भाग्य खुल गया, कुछ भी कारण हो सकता है, परंतु शक्ति, उसके शब्द जो भी है, किसी भी देहधारी को शक्ति समझना, शक्ति बना लेना, स्ट्रेंथ बना लेना, अर्थात हम कभी ना कभी धोखा खाएंगे जरूर। बाबा ने स्लोगन दिया, एक ही बल और एक ही भरोसा। इसके लिए किसी भी देहधारी को अपना स्ट्रेंथ नहीं बना लेना है। फिर है फ्रेंडशिप, सभी से फ्रेंडशिप, सभी से अच्छा है, पर किसी को खास बना के उसमें फंस जाना, उसमें भी यदि वो कोई बहन है तो उसमें वो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप ही रह जाए, ये बहुत कम होता है। उसने कहीं ना कहीं, कहां ना कहां से, चाहे इधर से या उधर से, कुछ ना कुछ होगा हलचल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दोष ना स्त्री का है ना पुरुष का, दोष उम्र का है। हॉर्मोन्स हाईजैक द इंटेलिजेंस, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो तर्क है, मनुष्य को जो विवेक है, ये जो मचलते हुए हॉर्मोन्स है शरीर के, खींच कर लेके जाते हैं। इसके लिए सभी अच्छे हैं, सभी से प्यार है, पर इसी से प्यार है और यही अच्छा है, या जाना अर्थात हंसना। फ्रेंडशिप सबसे टू मच इंटीमेसी, टू मच फैमिलियरिटी जहां आएगी वहां पर कंटेम्प्ट, वहां पर घृणा, वहां पर नफरत, वहां पर पैशन, वहां पर लस्ट, एनमिटी, कुछ भी आ सकता है इसमें से। जो व्यक्ति है वो अगर नहीं मिलता है तो एक रिएक्शन जो मनुष्य मन की है उसको फोर्स से पाया जाए, उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो उसको समाप्त कर दिया जाए, ये नेक्स्ट स्टेप लेता है, ऑब्सेशन, जुनून बन जाता है वो। ये देखा गया है, स्टडी की गई है लोगों के मन की, क्या क्या करते हैं। इसलिए किसी से भी इतना नजदीक नहीं चले जाओ, वहीं पर पहले ही स्वयं को थोड़ा रोक देना है, क्योंकि एक बार इस यात्रा में जो आगे चला जाता है उसको पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। जितने लोगों का हमने सुना है, जितने भाई बहन बताते हैं, उनकी शुरुआत वहीं से होती है, सेवा से, और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। सेवा केवल नाम मात्र रह जाती है। थर्ड है फ्रेंडशिप, दोस्ती, संबंध। इसमें क्या हो, डिटैचमेंट। जितनी ज्यादा, जितनी अधिक डिटैचमेंट, उतना ही व्यक्ति, उतना ही वो रिलेशन स्टेबल रहता है और लंबा समय चलता है। जिस रिलेशनशिप में अटैचमेंट आ गई उसमें हलचल होनी चालू होती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे भाई बहने हैं जिनके हम संपर्क में हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक, उनसे डिस्टर्बेंस कभी नहीं होता है। डिस्टर्बेंस किससे होता है, जिससे ज्यादा कॉन्टेक्ट में है, और जहां पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वहां डिस्टर्बेंस बहुत अधिक होता है। इसके लिए इमोशनली स्वयं को डिटैच रखना है, इमोशनली स्वयं को टू मच सेंटिमेंटल टॉय, सेंटिमेंटल बेबी नहीं बन जाना है, नहीं तो योगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये। क्योंकि जो जो इस मार्ग पर गए हैं, कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंचा दिए गए। तीसरा है जो एक बड़ी भूल है, वो है इंटीमेसी कहो या फ्रेंडशिप। चौथा है इस कुमार जीवन में साधन बहुत आवश्यक है, परंतु साधनों में इतना डूब जाना कि बाहर ही नहीं निकलना। सब कुछ टीवी, टीवी तो कम, मोबाइल, इंटरनेट, सारा मीडिया, सोशल मीडिया एक जाल की तरह है। सेवाएं बहुत होती है इससे, और सेवाएं ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, परंतु सेवाएं बाजू रह जाती है और कुछ और चालू हो जाता है। हम कितना उसमें इन्वॉल्व हैं, खुद को थोड़ा सा डिटैच करना है। विदेश में बात की जाती है स्क्रीन टाइम की, कितना व्यक्ति देखता है उसमें, टाइम कितना है टोटल। यदि ये ब्राह्मण जीवन में साधना छोड़कर साधनों में ही हम डूब गए, साधना कब करेंगे, और उस साधनों में बहुत बड़ी माया है। हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं जो विदेश की एक बहन ने सुनाया था कि एक कुमार था और जो बहुत अच्छी सेवाएं करता था, और बहुत कुमार, पुराना कुमार था, और जिसने अच्छी अच्छी सेवाएं की, नई नई सेवा की शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, और अचानक एक दिन सेंटर में आना उसका कम हो गया, ये आता था तो बैठता था, कुछ बात नहीं करता था, उदासी लगती थी। बहनों ने पूछा भी क्या हुआ तो ऐसे ही कुछ बहाने बनाता था, कहता था प्रोबेबली बाबा डजंट वॉन्ट मी टू वॉक एनी मोर, ऐसे बाबा के ऊपर डालता था कि शायद बाबा की अभी इच्छा नहीं है कि मैं और सेवा करूं। और फिर उसको कई बार पूछा गया, नहीं बताया उसने। फिर धीरे धीरे एक बहन को उसके साथ बिठाया और काउंसिलिंग के लिए कि बताओ क्या हुआ है, क्यों तुम उदास लगते हो। तब उसने बताया कि उसको एडिक्शन हो गया, एक यूट्यूब एडिक्शन। दिन भर सेवाएं करो और रात में थक जाता था तो उसमें बैठता था और कुछ देखते रहता था, कभी 11 कभी 12 कभी 1। फिर अमृत वेला मिस, और जहां अमृत वेला मिस हो गया और जहां कुछ और आकर्षण आ गया वहां पर ज्ञान में कहां से इंटरेस्ट रहेगा। जब ज्ञान और योग में इंटरेस्ट चला गया तो योग और फिर सेवाओं में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर निमित्त और नाम मात्र वहां कर रहा है। सारे मीडिया जरूरी है पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साधना। बीच में अगर हो सके तो उससे अटैच हो जाए ऑफलाइन। कितना दिन ऑफलाइन रह सकते हैं? एक दिन ऑफलाइन कौन रह सकते हैं? 5 दिन, 10 दिन रह सकते हैं। अननेसेसरी इंटरनेट सर्फिंग, ये दूसरा एडिक्शन है। लक्ष्य नहीं है क्या करना है, ऐसे ही सर्च करते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर ये क्लिक, लोग वो क्लिक, और कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और चालू कर रहे हैं रात को 10 बजे और रात के समय जबकि बुद्धि थकी हुई है, सारे रिस्ट्रेन रिस्ट्रिक्शन कम हो गए हैं, श्रीमद की थोड़ी सी विस्मृति है, अमृत वेले जैसी पावरफुल स्टेज नहीं है, संसार का विकारी वातावरण है, उस पीरियड में नेट पर बैठे और वहां पर फिर कुछ करते 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 1 बजे 2 बजे फिर कहां से अमृत वेला, कहां से योग, कहां से तपस्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो। इसलिए सोशल मीडिया का हो या इंटरनेट का हो, आप की तरह जला के खाक कर देगा, रोटी भी बना सकता है, जिंदा भी रख सकता है, पर भाग है, परंतु सारा भवन ज्ञान और योग को भस्म नहीं कर सकता है। इसके लिए एक्सट्रीम केयरफुल, हम जो जो देख रहे हैं, जो जो क्लिक किया जा रहा है, ये सोचो कि हम डायमंड हॉल में हैं और डायमंड हॉल में जो स्क्रीन देख रहे हैं वहां सब कुछ दिखाई दे रहा है और पूरा ब्राह्मण परिवार देख रहा है जो मैं देख रहा हूं उसको। यदि आपको 1 घंटा दिया जाए और कहा जाए जो तुम देखोगे चाहे किसी भी चैनल और किसी भी, वो सारा ब्राह्मण परिवार देखेगा और उनको पता रहेगा तुम ये देख रहे हो, तो उस स्मृति के साथ ही उसको यूज करना जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जिसके विषय में जानकारी चाहिए वो जरूर ढूंढना है उससे, परंतु जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई लेन देन नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं। और देखते बैठे हैं हम, देखते हैं कई सारे कुमार बातें करते हैं, ट्रेलर्स, वो कहते हैं हम मूवी तो नहीं देखते हैं पर ट्रेलर जरूर देखते हैं, कौन सी मूवी रिलीज हुई और कौन सा क्या हुआ, जो एक्टर्स हैं उनके क्या चरित्र हैं, पहला एक प्रश्न है, कौन सी अवेयरनेस है उनके अंदर, अध्यात्म शायद नहीं। धीरे धीरे वो सारी मूवीज देखते देखते हमने देखा है कुमारों में वही इच्छाएं प्रकट होती है, तो वही सब कुछ करना चाहते, सीखते कहां से है, सब लोग मूवीज से ही सीखते हैं, इन्हीं सब बातों से सीखते हैं। इसके लिए तपस्वी जीवन अर्थात नो, ये सारी बातें स्टॉप, जिनका कोई उपयोग नहीं, जिनका कोई लेन देन नहीं, सबको स्टॉप कर देना। ये एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल होता है ना, वो सक कर लेता है, खींच लेता है अपने अंदर, ये सब ऐसा ही है। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया दूसरा व्हाट्सएप, उसमें भी ग्रुप्स, हजारों कितने, एक एक व्यक्ति कितने कितने ग्रुप्स में ऐड है, और उसमें व्यर्थ का कचरा आ रहा है। किसी ने एक हमको चित्र भेजा था, उस चित्र में ऐसा एक कमरा है बड़ा, उसमें चार भाग है और दीवारें हैं, एक व्यक्ति अपना कचरा दूसरे के कमरे में डाल रहा है, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के, एंड दिस इज नोन एज व्हाट्सएप ग्रुप्स। क्या वास्तव में इतनी आवश्यकता है? अननेसेसरी कोई रोज नए ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें जबरदस्ती दूसरों को पकड़ पकड़ के ऐड करते हैं, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनको पूछे मैसेजेस करते रहते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस। व्हाट इज द नीड? क्यों नए बॉन्डेजेस क्रिएट करने हैं? ये जो डिजिटल बॉन्डेज है, डिजिटल माया जो है, डिजिटल एडिक्शन है, जबरदस्त एडिक्शन। वो तो छोड़ दिया, सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग, वो सब नहीं है, और उससे भी खतरनाक है ये, क्योंकि ये एडिक्शन ऐसा है कि व्यक्ति छूटता नहीं इससे, वो हाथ मचलते हैं टाइप करने के लिए। मेडिकल में, हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ सब जगह पर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लाइन निकाल देते हैं, आईवी लाइन, उनके हाथ को बॉक्सिंग बैंडेज बांध देते हैं, ऐसे जो करना है करो, वो नहीं निकलेगा। कभी कभी हमको भी लगता है ऐसे बॉक्सिंग बैंडेज चाहिए, पूरे उंगलियां बांध देते हैं ऐसे ऐसे कंप्लीट, अब करो जो करना है, कैसे टाइप करोगे? मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस, सोशल अब्यूज, रिवेंज, वॉर। एक जमाना था जब युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में युद्ध होता था, अभी डिजिटल कुरुक्षेत्र है, सोशल मीडिया पे युद्ध चलते हैं, और उसमें कितने लगे हुए हैं। स्टॉप ऑल द डिजिटल नॉनसेंस, जिसकी आवश्यकता है उतना करके स्टॉप, डिटैच हो जाना उससे, फॉरवर्ड करते रहना, ये करते रहना, इधर भेजते रहना, उधर भेजते रहना, इधर ये उधर वो, क्या आवश्यकता है? ये फेसबुक और इतना कुछ बना के रख दिया उसने, इतने दोस्त और इतने ये। हमारे पास एक कुमार थे, इतने पावरफुल कुमार थे, और हमारे साथ ही पढ़ते थे मधुबन में, और जाते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की, पढ़ाई करने जा रहे थे पीजी, प्रतिज्ञा की बस अब जाऊंगा और आके समर्पित सबके सामने। यहां से गए, कहीं पर गए, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बुलाया गया कई बार, नहीं आए, कह रहे थे और थोड़ा अनुभव चाहिए। धीरे धीरे फेसबुक पर किसी से दोस्ती हुई, बीके, बीके को माया बीके के से आती है, अज्ञानियों से कमाती है। किसी बहन से दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप बढ़ी, और फिर धीरे धीरे शादी हो गई। अब आना तो दूर, पता ही नहीं कहाँ है, हो गए। और तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं, सीधा 2 और 3 बजे उठकर पांडवन पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी, मुरलियों का अध्ययन करने वाले, 69 से मुरलियां चालू पढ़ना, 70s की चालू, 80s की चालू, चर्चा कर रहे हैं सुबह शाम, ऐसे कितने हैं जो बहुत पावरफुल थे और कहां खो गए पता नहीं, कितने आए और चले गए। और कोई कोई तो ऐसे कहते हैं, पहले कुमार थे अब गृहस्थ बने, कहते ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। ये हमारे तो है नहीं, बाबा की इच्छा है, ये उनके ही बच्चे है, ये जबरदस्त माया है। और कहते इनके ही कल्याण के लिए हम गए थे, नहीं तो ये लोग ज्ञान में कैसे आते, पहले एक थे अभी 4 हो गए, फायदा हुआ कि नहीं, नहीं तो कैसे बहन बिचारी कैसे ज्ञान में आती। वो छोटे नई दो आत्माएं, उनका भी तो कल्याण करना था ना, ये तो कहानी सब बकवास, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। डिजिटल वर्ल्ड में वो नहीं जाना है, डिजिटल डिटॉक्स। एडिक्शन है जो स्मोकिंग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन में किया जाता है डी एडिक्शन के लिए, वही सारा इधर भी करना पड़ेगा, वही सारा संस्कारों के लिए भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी हैबिट है एक, उसमें व्यक्ति बहुत सारा ढूंढ लेता है। अभी अभी एक विदेश की एक महिला ने सुसाइड किया, सुसाइड करने के बाद उसके मोबाइल में ढूंढा गया, तो वो दो दिन से सर्च कर रही थी, सर्फ कर रही थी हाउ टू कमिट सुसाइड, पूरा सारे वेबसाइट्स उसने खोल के रखे थे, वो ढूंढ रही थी, हिस्ट्री में जाके ढूंढा, व्यक्ति सब कुछ ढूंढता है वहां पर, नए नए मेथड्स उसमें से पता चल जाते हैं। हम यदि इंटरनेट का, मोबाइल का, सोशल मीडिया का यूज करें तो केवल तीन होने चाहिए, ज्ञान, योग और सेवा, बस। ज्ञान की कोई पॉइंट समझ में नहीं आई, कोई नए मुरली में नया शब्द आ गया एकदम, जैसे आज की मुरली में आया वो भागवत की बात, तो कौन सी थी बात वो जो गोपिया ने सहन किया, क्या क्या सहन किया, वो ढूंढ सकते हैं, आ जाओ। वो जो मुरली में आया भैंस बन जाती है, कोई दृष्टि देती है तो भैंस, ये कौन सी कहानी है, उसको आप ढूंढ सकते हो। ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं जो क्लियर नहीं है, जो रिसर्च जिसका करना है, वो इंटरनेट पे जाओ, ढूंढो और आ जाओ, बस ये काम कर सकते। परंतु व्यर्थ के उसमें लगे हुए हैं, ढूंढ ही रहे जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक ऐसा विषय है डिजिटल, सबसे बड़ी माया यही है, इससे जो सेफ वो सेफ, जो इसमें फंस गया वो गया। हम देखते हैं जो कुमार पहले कहते थे ये मोबाइल वगैरह हम कभी यूज नहीं करेंगे, जब मोबाइल नए नए आए थे तो कहते थे बिल्कुल नहीं, ये मोबाइल हम कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, आज देखो तो 24 घंटे उसी में डूबे हुए हैं, और एक नहीं दो दो, कोई के पास तीन तीन, किसी के पास चार चार। तो ये भूल है, भूले तो बहुत है, समय हो रहा है, इसलिए ये तीन चार बातें ही हमने आपसे बताई कि एक बाबा को ही सहारा बनाना, एक बाबा को ही अपनी शक्ति समझना, एक बाप से ही दोस्ती रखना, और डिजिटल वर्ल्ड में खो न जाना, जितना हो सके। और एक लास्ट बात, इंडिपेंडेंट रहना, फाइव टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंसी, फाइव टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी है। एक है फिजिकल डिपेंडेंसी, शारीरिक रूप से किसी पर डिपेंड है, जितना हो सके अपने शरीर को स्वस्थ रखना ताकि बीमार ना पड़े, क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है, इसके लिए ऐसा हमारा दिनचर्या, जीवनचर्या हो, स्वास्थ्यचर्या हो कि जिसमें हम स्वस्थ रहें, क्योंकि बीमार पड़ना अर्थात आधार लेना, वो दूसरी बात है, बीमार पड़ने के बाद क्या करें वो दूसरा विषय है, पर पड़े ही ना स्वयं को स्वस्थ रखना, ये पहली बात, एक फिजिकल डिपेंडेंसी। दूसरा है इमोशनल डिपेंडेंसी, किसी में इतना इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाए कि फिर हमारे इमोशंस उसके कंट्रोल में है, रूसना, रूठना, नाराज होना, यही चालू रहता है दो व्यक्तियों के बीच। इमोशनली स्वयं को इंडिपेंडेंट, डिटैच्ड, न्यूट्रल रखना। तीसरा है इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, कोई ज्यादा ही होशियार है, हर बार उसी के पास जाना और उसी से सॉल्व करना अपना प्रॉब्लम, क्योंकि उसी से प्लानिंग लेना, उसी से पूछना क्या करना चाहिए, इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो भी एक इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी है। फिर है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कुमार जीवन में जितना हो सके आर्थिक रीति से भीख मांगना ना पड़े किसी के पास पैसों से, स्वयं को इंडिपेंडेंट रखना, जितना हो सके स्वयं को अपने पैरों पर खड़े होना, ना तो दोस्तों से, ना तो किसी साथी से ना माँ बाप से, और जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के हाथ हाथ नहीं कर रहे, पैसे दे दो, भोजन दे दो, खुद ही भोजन बनाना सीखना है, जो जिनको मिलता है वो भी सीख के रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अपना भोजन खुद ही बनाना सीखना है, किसी के भी आगे, किसी के भी आगे भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। कितनी भी कैसी परिस्थिति हो, वहां पर हम अपना भोजन खुद बना सके। अभी सब कुछ मिल रहा है, परंतु कल की कोई गारंटी नहीं है, सब छिन जाएगा, दवा अकेले हो जाएंगे। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, लास्ट है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, और ये सबसे सूक्ष्म है। स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी अर्थात पुरुषार्थ के लिए भी कोई आधार ना हो, अपना भट्टी हम रोज खुद करें, यहाँ भट्टी अरेंज हो तब हम भट्टी करेंगे, यहाँ भट्टी हो, यहाँ क्लास हो तब हम सुनेंगे, नहीं, रोज अपना पुरुषार्थ खुद करना है, अपनी भट्टी खुद अरेंज करनी है, मेंटल प्लानिंग करनी है रोज। तो ऐसी स्वयं को हर प्रकार की डिपेंडेंसी से मुक्त करते हैं। ये भी एक भूल है, डिपेंडेंट हो जाना किसी पर, पैरासाइट हो जाना, चाहे माँ बाप पर, चाहे भाई पर, बहन पर, सीनियर्स पर, साथियों पर, कोई भी, वी शुड रिमेन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में बहुत सुख है। तो ऐसी ये कुछ बातें, और कुछ नॉट्स को अपने तीव्र करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, कभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन